આત્માનુશાસન લેક્ચર નંબર 65 ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો વચ્છાયાણં નમો લોયે સૌવસાહૂણં લક્ષ્મીનિવાસનિલયં વિલીનવિલયં નિધાય હૃદિવીરમ આત્માનુશાસનમહં વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. પૂજ્ય શ્રી ગુણભદ્ર આચાર્ય રચિત યહ આત્માનુશાસન નામક પ્રવચન હૈ ઓર ઉસ પર ક્ષુલ્લક મનોહરજી વર્ણી જો સહજાનંદજી ઉનકે પ્રવચન હુએ હૈ. યહ અભી દૂસરી પુસ્તક હૈ આત્માનુશાસન પ્રવચન કે ઇસમે હમ પૃષ્ઠ સંખ્યા 6 પર આ ગયે હૈ ઓર નીચે સે દૂસરી લાઇન વહાં સે પઢેંગે. 83 નંબર કા શ્લોક પઢા થા ઉસકા અર્થ વગેરે દેખા થા ઉસી કા પ્રવચન ચલ રહા હૈ. દેખો વિઘટન યે હેડિંગ હૈ ને યહાં પર. ભૈયા કિસકે લિયે ઇતના ધન કા સંચય કર રહે હો? યે બંધુજન જિનકે લિયે નિરંતર પીડિત હોકર ઓર અપને કો ભી કષ્ટ મે ડાલ કર ઇતના અથક પરિશ્રમ કર રહે હો? યે બંધુજન કેવલ ઇતને હી કામ આયેંગે કે મર જાને પર ઇસ શરીર કો જલ્દી જલા દેંગે, ઇસસે આગે ઓર કુછ કામ ન હોગા. હા, જગત મેં યે જીવ જન્મતે હૈ મરતે હૈ પર મરણ ઉન્હીં કા સફલ હૈ, જીવન ઉન્હીં કા સફલ હૈ જો એસે ઉપાય બનાતે જાય કે જિન ઉપાયોં સે યહ જીવ સંસાર કે આવાગમન સે, આવાગમન એને જન્મ મરણ આના જાના, વો કે મુક્ત હોને પર આવાગમન નહીં કરતા હૈ સંસાર મેં. આવાગમન એને અન્ય અન્ય પર્યાયો મેં જન્મ લેતા હૈ, મરણ કરતા હૈ. તો સંસાર કે આવાગમન સે યાની જન્મ મરણ સે સદા કે લિયે મુક્ત હો જાય, અન્યથા यह जंतु का ही जंतु रहेगा. हाँ, आउट ऑफ रेंज आ रहा है क्यों? ओ અભી શરૂ કરતે હૈ. પેજ નંબર 6 પર હમ નીચે કા પઢ રહે થે, ફિર દુબારા વહાં યે બાત હમને યે પઢી થી યહાં પર, જો કલ ભી બાત હમને બહોત બાર દેખી થી કે બંધુજનો કા ઉપકાર ઇતના હી હૈ કે શરીર કો જલ્દી જલા દેંગે. પેજ નંબર 7 પર હમ પઢ રહે કે વહી જીવન સફલ હૈ કે જિસ જીવન મેં એસા ઉપાય બનાયેંગે કે યહ જીવ સંસાર કે આવાગમન સે સદા કે લિયે મુક્ત હો જાય. સંસાર કા આવાગમન એને જન્મ મરણ, જન્મ મરણ. યે ચૌથી લાઇન તક હમ આયે થે. અન્યથા યહ જંતુ કા હી જંતુ રહેગા. અભી સુનાઈ દે રહા હૈ કે નહીં શોભા? હા, કુછ બોલી આપ મુજે, કલ સમજા નહીં ક્યા બોલે આપ. એક મિત્ર અપને બીમાર મિત્ર કો દેખને શામ કો ગયા. વહ બહોત કઠિન બીમાર થા, બિસ્તર સે ભી નહીં ઉઠા જા સકતા, કરવટ ભી નહીં બદલ સકતા થા. મિત્ર પૂછતા હૈ, કહો મિત્ર કૈસી દશા હૈ, ક્યા સ્થિતિ હૈ? તો બીમાર મિત્ર ને કહા કે ક્યા બતાએ, બિસ્તર સે ભી નહીં ઉઠા જાતા, અત્યંત કમજોર હાલત હૈ. कुछ बातें करके आगंतुक मित्र अपने घर चला गया। रात व्यतीत होने के बाद सुबह दोपहर के बीच में वह गुजर गया। अब पुनः वह मित्र शाम को आया तो मित्र पूछता है कि मित्र के भाई से, कहो जी क्या हालत है? तो वह कहता है, वह तो दुनिया से भी चल दिया यानी मर गया। तो वह झुंझलाकर बोला, कल तक तो यूं कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से भी चल देने की ताकत कहां से आ गई? जीवन और मरण की दशाएं। जीवन और मरण ये दोनों रहट की घड़ियों की तरह चलते हैं। रहट समझते हैं ना, वो कुएं पे लगता है ना रहट, पानी निकालने के लिए रहट होता है वो। जैसे रहट की घड़ी भरी और थोड़ी देर में रीति हो गई। घड़ी यानी वो तो छोटी छोटी घट जैसे होते हैं ना, उसमें पानी नीचे जाता है, पानी भरता है, ऊपर आता है, तो वो ऐसा अंदर से लगे हुए तो उल्टा अपने आप उल्टा हो जाता है, तो उसमें वो कलेक्ट हो जाता है पानी। वो मराठी में उसको गाड़गा कहते हैं, रहाट गाड़गा, क्योंकि वो छोटे छोटे, उसको यहाँ घड़ी कहा, रेट की घड़ी। ये थोड़ी देर में रीति हो गई, फिर भरी, फिर रीति हो गई। जैसे कोई वृक्ष से फल टूटा तो टूटते ही जमीन पर ही तो वह आएगा, टूटकर तो टूटने के बाद जमीन पर गिरने के बीच में वह फल कितने देर रहेगा? आधा या एक दो सेकंड भी न रहेगा। यो ही समझिए कि जन्म हुआ तब यह टूटा और मरण की जमीन पर आ गया। इस बीच में हम आप कितना समय है, कभी लग गया है कि समय खूब है? अभी लग रहा है कि समय खूब है। अरे जितना समय व्यतीत हो गया, हम आपके 40-50 वर्ष व्यतीत हुए, ऐसा लग रहा है यह समय कहाँ से बीत गया इतनी जल्दी। किंतु आज का एक दिन बहुत बड़ा लग रहा है। अभी तो 6 घंटे और है, 8 घंटे और पड़े हैं, हो जाएगा काम। आज का दिन बड़ा लंबा लग रहा है और बीते हुए 40-50 वर्ष का समय ऐसे बीत गया कि पता नहीं चलता ये वर्ष कहाँ से गुजर गए। अरे जैसे ये 40-50 वर्ष, 40-50 मिनट जैसे गुजर गए, यूं ही अब रही सही थोड़ी सी आयु, यह तो शीघ्र ही गुजर जाएगी। इस दुर्लभ जीवन को पाकर कोई अनुपम कार्य कर ले। सम्यक भाव की आदेयता। देखो भैया, अपूर्व बात प्राप्त करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, बस थोड़ी ज्ञान विवेक दृष्टि भर चाहिए। विवेक नहीं, वो भेद ज्ञान करना है, सही विचार करना है। काम जो कर रहे हो सो होने दो। कर रहे हो ज्ञान, हम मानते कर रहे, परंतु तो नहीं, अपने से नहीं हो रहे, वो तो हो रहे, जो पुद्गल की कार्य है वो उसमें हो ही रहे, वो होने दो। व्यापार आदि अन्य अन्य काम पर सही को जानने में भी क्या कुछ कठिनाई आती है? यानी जो काम चल रहे हैं उसमें हमको सही जानना है, बस इतना ही करना है। रोटी बन रही, बनने दो, तो यहाँ तो ये रोटी किसका परिणाम है ये तो हम निर्णय कर सकते हैं, हम तो उसमें में भी जानने वाले ही रह सकते हैं। मैं आत्मा चेतन हूँ, अनादि काल से यह उपाधि सहित है, शरीर और कर्म इसके संबंध में बने हुए हैं। इतने पर भी आत्मा अपने स्वरूप से आत्मा मात्र है। ये उपाधि क्या है? राग द्वेष आदि की उपाधि ऊपर से लगी, कर्म का उदय है, उसका कार्य चल रहा है और ये मान रहा है कि मैं इस रूप हूँ, परंतु वो तो अपना स्वरूप छोड़कर अन्य किसी रूप से तो हुआ ही नहीं है। ये जड़ कर्म परमाणु अपने स्वरूप से जड़ है, ये शरीर परमाणु यह भी जड़ है। मैं सबके बीच सबसे न्यारा केवल चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ। एक ही जगह ये तीनों ही पदार्थ है, मैं स्वयं हूँ, कर्म के परमाणु भी है, शरीर के परमाणु भी है, मैं तो जुदा का जुदा हूँ। धन्य है वे सद्गृहस्थ जो सारे काम भी करते जा रहे हैं और अपने को न्यारा ज्ञान स्वरूप निरखते जा रहे हैं। दुनिया तो वो सारे करते हुए जो दिखते हैं, दुनिया को तो दिख रहे कि सारे काम तो कर रहे और वो अपने आप को ज्ञाता रूप अनुभव कर रहे हैं। हल में एक ऐसी अद्भुतता है। वे तो सम्यक दृष्टि है, पूज्य है। दुनिया तो उन बोलना पड़ता है क्योंकि हाँ मैं जुदा हूँ, ये बोलने की बात नहीं अनुभव ने की है। ये ऐसा है ना, शुरू में ऐसे होगी बातें, परंतु जब अनुभव हो जाएगा तो ये तो भाषित हो जाएगा, उसके लिए कोई रटने की बात नहीं है। मैं मनीषा हूँ कितने बार बोलती हूँ दिन में, नहीं बोलती, फिर वो प्रतीति बनी है, ऐसा ही होगा यहाँ पर। कृतज्ञता, ये कृतज्ञ समझते ना, दो शब्द आते हैं कृतघ्न और कृतज्ञ। कृतज्ञ ने किए हुए उपकार को स्मरण करने वाला है वो कृतज्ञ, और कृतघ्न आपके गुजराती में है कि नहीं शब्द, है ना, कृतघ्न शब्द है ना। हाँ, एक कथानक आता है कि एक सेठ ने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र दिया और कुछ समाधान कराया। वह बैल मरकर स्वर्ग में देव हुआ। देव होकर उसने अवधि ज्ञान से विचार किया कि मुझे अमुक सेठ की कृपा से यह सदगति मिली है। देव नीचे आता है सेठ को वंदना कराने के लिए। सेठ एक मंदिर में था, वहीं पास में एक मुनि महाराज बैठे हुए थे। देव आया, उसने सबसे पहले सेठ को वंदन किया और पीछे मुनि को वंदन किया। लोग बड़े आश्चर्य में पड़े, तो मुनि महाराज स्वयं अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि भाई, इस जीव का साक्षात उपकार इस सेठ के निमित्त से ही हुआ है, इस कारण कृतज्ञ होकर इस सम्यक दृष्टि परोपकारी श्रावक का वंदन किया है। यथार्थ ज्ञान का आंतरिक सुफल, भैया सम्यक तो उत्पन्न हो जाए, इसके समान और कोई वैभव नहीं है। ये दुनिया का वैभव वैभव लगता है, अपना लगता है, वो तो अपने से जुदा है, परंतु यहां कहते कि सम्यक दर्शन सम्यक हो जाए वही वैभव है। अरे घर गृहस्थी के कमाने के सारे धंधे करते रहो, पर जो यथार्थ बात है उसको समझते रहने में क्या कठिनाई हो रही है। यानी बाकी चीजें होते हुए भी ये साथ साथ ये भी तो चल ही सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि कुछ समय आत्मदृष्टि में व्यतीत न हुआ तो वह जीवन क्या जीवन है। एक बार किसी भी क्षण यदि एक आत्मा की झलक हो जाए तो उससे हमें केवल शांति के लिए ही उपयोग मिलता हो, इतना ही नहीं। फिर से पढ़ते हो, देखो क्या कहते, एक बार किसी भी क्षण यदि एक आत्मा की झलक हो जाए तो उससे हमें केवल शांति के लिए ही उपयोग मिलता हो, इतना ही नहीं, किंतु जब तक इस लोक में रहना शेष रह गया है, लोक में नहीं जो जन्म मरण में, नहीं तो लोक के बाहर नहीं जाने वाला सिद्ध होने पर भी, तब तक उसकी बुद्धि लौकिक कामों में व्यापार आदि में भी प्रखर रूप से चलने लगती है। यानी उसका ज्ञान उपयोग अभीक्षण हो जाता है, अन्य कामों में भी उतना ज्ञान खिलता है, इसका अर्थ है उसका सबसे मुख्य काम केवल आत्म साधना ही है। सभी रागी मनुष्य ज्ञान वैराग्य की धुन को बनावे।
कभी-कभी ऐसा भी आता है कि ये तो एक समय की पर्याय है, उसके पीछे कहां पड़ना,
किसमें
सम्यक दर्शन पर केवल ज्ञान।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, उसके पीछे नहीं पड़ना है। हमें तो अपने आत्मा की महानता होती है तो ये प्रकट होती है, तो कहते महत्ता तो अपनी आएगी, परंतु सम्यक तो प्राप्त करने के संबंध में ये बहुत आसान चीज है। ये प्राप्त कर लिया तो मनुष्य बहुत सफल हुआ, इस तरह से वो एक पर्याय के पीछे पागल नहीं हो रहे।
नहीं, पागल ये नहीं, माने एक पर्याय के पीछे अभी ये सोगानी जी के जो भी लखान है, जो भी है उसमें कहा तो वो तो एक समय की पर्याय है, वो मेरे पास आवे ना आवे, केवल ज्ञान मेरे पास आवे ना आवे,
वो तो मैं त्रिकाली हूँ उसकी मुख्यता जब करते हैं उस समय ये बात होगी, परंतु यहाँ उसकी बात नहीं, अभी अनुभव की नहीं, इन्हें ऐसा अनुभव हो जाए उसके लिए बात हो रही है। गृहस्थ की काम करते हुए ऐसे अनुभव जिसने कर लिया है तो उसके तो कोई यानी वो बहुत महान वैभव प्राप्त हुआ है। यहाँ पर्याय की मुख्यता या पर्याय की महानता नहीं गा रहे, समझ में आई ना बात। और सम्यक तो
मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई वो प्राप्त करने के लिए तो बहुत जरूरी है और आश्रय लेने के लिए जरूरी नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन जैसे लखान में तो ऐसा ही प्रतिभाषित होता है कि
देखो अपेक्षावश उसको पढ़ना, एक अपेक्षावश लेना है, सर्वथा अगर त्याज्य है तो फिर उसके प्रयत्न भी क्यों करे, समझ में आती
है?
उसका प्रयत्न तो नहीं करना है, प्रयत्न तो अपने आत्मा में ही लीन होना है, वो अपने आप प्राप्त होती है। परंतु कहते हैं ना वेद विज्ञान से वो प्राप्त होता है, वो एक स्टेप है, वहां से शुरुआत हुई मोक्ष मार्ग की। देखो प्रत्येक जो कथन है उसको अपेक्षा सहित ही समझना चाहिए। और वो भी बात अगर सोगानी जी की, सर्वथा जिसका अभ्यास नहीं है उसको अगर पढ़ने जाए भ्रम हो जाएगा। नहीं, भ्रम हो सकता है उसमें। अभी गुरुदेव ये भी कहते थे कि समय सार पढ़ने के पहले प्रवचन सार पहले पढ़ो, क्यों? वहां तो राग को एकदम पुद्गल का ही कह दिया, और ऐसे अगर मानेंगे अरे वो तो जीव का है ही नहीं है, तो पहले अपराध स्वीकारना पड़ेगा। जीव की पर्याय में है, जीव का है वो तो ज्ञान की अपेक्षा उसको स्वीकार करके फिर श्रद्धा की अपेक्षा उसको भिन्न कह देंगे। ज्ञानियों के आत्म साधना की मुख्यता, साधुओं को तो आरंभ और परिग्रह की किल्लत नहीं है, अतः ज्ञान साधना की तो निरंतर धुन बना सकता है। परंतु गृहस्थ को तो आजीविका का कार्य भी अत्यंत आवश्यक है, गृहस्थ के रहते हुए ठीक है उसे भी करे, केवल दो ही प्रोग्राम रखे अपने और कुटुंब को, दो ही प्रोग्राम रखे अपने और कुटुंब के शरीर के पालन पोषण के लिए, धन अर्जन करना और धन कमाना। पर यहाँ केवल दो ही काम कौन करता है, बीच में पचासों काम मान लेते हैं। अनेक राग द्वेष और मोह की बातें करते हैं, और इतना ही नहीं व्यर्थ की गप्पो सप्पो में अपना घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं। अरे काम तो इतना ही करो आजीविका के लिए, अजीवी नहीं आजीविका, धन कमाओ और धर्म करो। ऊपर जो है ना धन का अर्जन करना और धर्म करना चाहिए था, दो ही प्रोग्राम रखे अपने और कुटुंब के। क्योंकि ये दो ऊपर तो केवल धन का अर्जन और धन कमाना दोनों बातें एक ही हो गई थी ना। तो क्या करना, धन कमाओ और धर्म करो। धन से जिस जिस से संबंध है उस उससे सद्व्यवहार कर लो, परंतु ऐसे कामों में तो न पड़ो जो व्यर्थ के काम है, जिनका न आजीविका से संबंध है और न धर्म से संबंध है। जिनमें तुम घुल मिलकर अपना मन बहला रहे हो, किस में तीन कैसे हुए?
माने यहाँ तो दो ही लिखी है।
हाँ।
मैं एक तो कैरेक्टर माने धर्म में समझता हूँ, फिर हेल्थ और फिर आजीविका माने धन। ऐसे ऐसे एक अंग्रेजी में कहावत आती है।
अंग्रेजी में नहीं, यहाँ की बात क्या है, ये गृहस्थ के लिए क्या जरूरी है, धन इसलिए कमाना है कि उसका जीवन चले, खाना पीना रहना जो है कुटुंब का पालन पोषण हो जाए,
उसकी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए,
ये जरूरी नहीं है।
मैं इसलिए कहा इफ वेल्थ इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट,
क्योंकि वहां तो मैं शरीर रूप हूँ ये मानकर ये सारे बनाए हैं वाक्य,
माने वो सदाचरण के वाक्य है।
यहाँ बात अलग हो रही है, उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो लौकिक में जो कुछ तो समाज में,
वो भी लौकिक की बात होगी।
लौकिक क्योंकि वो कुटुंब का निर्वाह करने के लिए आवश्यक चीज है, खाना है पीना है जो कुछ गृहस्थ के योग्य व्यवहार करना है उसमें एक धन की यानी वो तो आवश्यक चीज करके है, वो तो आवश्यकता के बाहर जाके वो धन कमा रहे, उस धन कमाने की बात नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतना जो आवश्यक है, परंतु ये तो उसके पीछे पागल हो रहा है, धन कमाने उसने अपना पूरा सर्वस्व उसमें लगा दिया उसने, क्योंकि मैक्सिमम पुरुषा तो धर्म में चलना था। अब है ना, धन से जिस जिससे संबंधित उसे उसे सदव्यवहार कर लो, परंतु जिसका आजीविका से कोई संबंध नहीं है ना ही धर्म से संबंध है ऐसे कामों में मत पड़ो, जिनमें तुम घुल मिलकर अपना मन बहला रहे हो वे परिजन इष्टजन बंधुजन तुम्हारे आत्मा के काम न आएंगे, इस पर गंभीर दृष्टि से निर्णय तो करो। पाप का भागी अन्य नहीं, वाल्मीकि ऋषि की कथा में बताया है कि वे पहले समय में लुटेरे थे, एक बार कोई साधु उस रास्ते से निकला, वाल्मीकि ने पूछा कि क्या है तेरे पास, साधु बोला हमारे पास यह सोटा और कमंडल व कंबल है। वाल्मीकि ने कहा जो कुछ हो रख दो। साधु ने कहा हे वाल्मीकि हमारा एक प्रश्न है, तुम घर के सब लोगों से उत्तर ले आओ, यह सब कुछ लेते जाओ या यहीं रख जाओ, हम यहीं बैठे मिलेंगे। वाल्मीकि ने पूछा कि क्या पूछा है महाराज, साधु ने कहा कि तुम सबसे यह पूछाओ कि तुम्हारे लिए मैं सभी मुसाफिरों को मार पीट कर धन को कमाता हूँ अन्याय करता हूँ, तो इससे जो पाप बंधेंगे उनको तुम बांटोगे या नहीं। उसकी कथा तो मालूम है ना वाल्मीकि की, ये बड़े बड़े ऐसे रंजन भर के एक को मारता था तो उसमें एक पत्थर डालता था, ऐसे सारे बड़े बड़े ये भर के रखे थे उसमें इसे हिल पर, वाल्या नाम का गांव है ना वो वहां दिखाते अभी टेकड़ी पर दिखाते, स्टोरी ऐसी बनी होगी परंतु वहां लोग कहते हैं, इसीलिए उसका गांव का नाम भी वाल्ले पड़ा है, वाल्ले वाल्मीकि से वाल्ले। बाद में हाँ बाद में लिखा ना, पहले तो वो वाल्या कोली कहते थे उसको, वाल्या नाम था उसका, वाल्या वाल्मीकि। भैया पापों का बांट लेना तो दूर रहा, साधारणतः सज्जन लोगों को पापों को स्वीकार कर लेने में भी डर लगता है, सो सभी ने यूं कहा कि हम पाप न बांटेंगे, उन पापों का फल तो तुम अकेले ही भोगोगे। वाल्मीकि के कुछ ज्ञान जगा और साधु महाराज के पास आते आते बहुत वैराग्य बढ़ गया। साधु से वाल्मीकि ने कहा कि महाराज जो कुछ भी हम पाप करते हैं वे कोई भी बांटने को तैयार नहीं है, हमें तो आप जैसा बनना है, मुझे अब किसी भी वस्तु से कुछ प्रयोजन नहीं है। अंत में वह एक सन्यासी हुए और कुछ साहित्यिक रचनाएं भी उन्होंने की। परिणामों की निर्मलता की आवश्यकता। सोच लीजिए कि जिस पदार्थ में जिस प्रकार से जो परिणमन होता है उस परिणमन को दूसरे कैसे बांटेंगे, हम पाप परिणाम करें और दूसरे बांट ले, यह कभी नहीं हो, कभी नहीं हो ही नहीं सकता। खुद की करनी खुद को ही भरनी पड़ेगी, दूसरा कोई भरने न आएगा, और जो कुछ हम पाप अथवा कर्म करते हैं बड़ी मुश्किल से टल सके तो टल जाए, अन्यथा इनका टलना कठिन है। हमें अपने परिणामों की निर्मलता बनाने की ओर ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में कुछ थोड़ा सा धन समागम मिल जाए तो यह बड़ी बात नहीं है, किंतु अपना परिणाम न्यायुक्त बना रहे है यह बड़ी बात है। बना रहे है नहीं चाहिए, अपना परिणाम न्यायुक्त बना रहे यह बड़ी बात है। धर्म वही कर सकता है जो दुनिया के लिए अपने को मरा हुआ समझ ले, तो दुनिया के लिए ये करना है वो करना है वो करना है। चेतो और अपने आत्महित के कार्य में लगो। आत्महित यही है, अपने सहज स्वरूप को पहचानो, उसी का उपयोग करो और उस ज्ञान पुंज के उपयोग में ही लीन रहकर स्थिर रहो। यानी अपना जो सहज स्वरूप है, गुणों का पुंज, उसका उपयोग करने की अपना उपयोग ज्ञान उसी में लगा लो और उसी में लीन रहो। 84 नंबर। जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिन स्वाहा परेश्य सकृत प्राण हारिनो न परे परे। इसका अर्थ देखते हैं पुस्तक में से कहां गया। नीचे पर गिर गया था पुस्तक। 84 नंबर। संसार परिपाटी के निपजावन हारे यानी उत्पन्न करने वाले विवाह आदि कार्य, तिनके करण हारे जे स्वकीय कुटुंब है, ते ही इस जीव के बैरी है। बहुरी जे एक बार प्राण हरे, ऐसे पर कहिए बैरी, ते बैरी नाही है। यानी जो एक बार प्राण को हरण करेगा, कोई मारेगा जान से, वो बैरी नहीं है। तो किसको? तो संसार परिपाटी चलाने वाले जो विवाहादि कार्य है, उसको कराने वाले जो कुटुंबी जन है, वो वैरी है, ऐसा कहते हैं। वो सारे माता पिता बंधु जो उसके देखो भावार्थ बता रहे, जो एक बार प्राण हरे ताको तू परम वैरी माने हैं, सो प्राण नाश वाका किया होता नहीं। वाका ने उसने वो हमारे प्राण हर नहीं सकता। ये कहते हैं ना, कोई दूसरे को प्राण दे नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ना हर सकता है, क्योंकि उसका आयु कर्म जितना है उतना वो रहेगा। आयु का अंत हो आए हो है ताते परमार्थतः प्राण हरण वाला वैरी नाही है। बहुरी जे विवाहादि कार्य नि विषय जीव को उलझाए, रागादिक के निमित्त बनावे है, ऐसे जे बंधुजन ते अनेक जन्म मरण का कारण कर्म बंध कराया या का बुरा करे है। हम तो वो तो सर्वोत्तम मंगल कार्य करके उसी के लिए सब दुनिया को भी बुलाते हैं, भोजन भी खिलाते हैं। महीना महीना तक नहीं आते हम, पता नहीं कौन क्या करता है। तो कहते अनेक जन्म मरण का कारण कर्म बंध कराया या का बुरा करे है, ताते परमार्थतः बंधुजन वैरी है। जैसे देना दिवावे सो वैरी नाही, जो नवीन देना करावे सो वैरी है। देना है ना कर्ज, जो कर्ज हमारा दूर करे वो वैरी नहीं है, नया कर्जा बनावे वो वैरी है। तैसे प्राण हरण हारा तो पूर्व कर्म की निर्जरा करावे है, ताते वैरी नाही। यह बंधुजन नए कर्म बंध का कारण निपजावे है, ताते यही वैरी है, ऐसा जानी इन्हीं को हितु मानी राग न करना। यानी ये तो उसके हितकारी मान रहे हैं, तो कहते कि उसके ये परिवार के तरफ तीव्र मोह से छुड़ा रहे हैं, उसके दूसरी बाजू दिखा रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं 84 के नीचे प्रवचन पढ़ रहे, जीव के बैरी। इस जीव का वास्तविक बैरी वह है जो इस जीव को जन्म मरण की संतान बढ़ाने में कारण बने। संकलेश विवलता आदि संकटों का जो कारण बने, उसको ही तो वास्तव में बैरी कहेंगे। अब लौकिक जनों द्वारा माने गए बैरियों की और ज्ञानी जनों द्वारा देखे गए बैरियों की तुलना करिए। बालक के माता पिता बंधुजन इष्टजन और रिश्तेदार उस बालक की आत्मा के प्रति क्या अच्छे या बुरे कर्तव्य करते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। हितकारी माता पिता, बालक के आत्मा का हित हो इस प्रकार का कर्तव्य माता पिता करें तभी तो वे हितु होंगे, क्योंकि सब कुछ सुख दुख और सभी अनुभव एक ज्ञान की दशा पर निर्भर है। जिस प्रकार का ज्ञान किया जाए उस प्रकार के सुख दुख आदि अनुभव में आते हैं। यदि यह ज्ञान अपने आप के सही स्वरूप को जानने में लगे तो उस ज्ञान मात्र निज तत्व के अनुभव होने में सर्व कल्याण ही कल्याण होता है। कर्म झड़ते हैं, कर्म रुकते हैं, यानी संवर नहीं जरा, झड़ते नहीं जरा, रुकते यानी संवर, शांति और संतोष का अनुभव होता है। तब ऐसे कार्यों में अपने को लगावे तब तो माता पिता और इष्टजनों ने मेरा हित किया यह तो अवश्य समझिए। अकलंक और निकलंक हित। एक बार अकलंक और निकलंक देव के माता पिता अष्टानिका के दिनों में किसी तीर्थराज के दर्शन करने गए। एक मुनि महाराज वहां पर बैठे हुए थे। माता पिता ने अष्टानिका में मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया और साथ में दो छोटे बालक थे। सो ऐसा प्रेम होता ही है कि नियम की बात, कुछ धर्म की बात बच्चों से कह दी जाती है। तो माता पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा भी यही नियम रहे ब्रह्मचर्य का। बालक कुछ समझदार थे, नियम ले लिया। जब अष्टानिका गुजर गई, कुछ और महीने गुजर गए, तो माता पिता ने उन दो बालकों की शादी की बात की। वे दोनों बालक कहते हैं, आप लोगों ने तो हमें ब्रह्मचर्य का नियम दिलवाया है, अब तो हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो माँ बाप ने बताया कि वह नियम तो केवल अष्टानिका भर के लिए था। अब उन दोनों बालकों ने यह बताया, हमने तो उस समय आजीवन ब्रह्मचर्य से रहने के लिए ही समझा था, इसलिए अब तो हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। माता पिता बड़े खुश हुए। संसार बुद्धि के कारणभूत बंधुजन। यह जीव ज्ञान मात्र है, पर यह लौकिक संकटों का मूल जो राग मोह है, इसका विनाश हो इस प्रकार की विधि कोई बनाए तब तो समझिए कि परिवार जनों के बालक के प्रति मित्रता का काम किया है। जनों ने चाहिए ना, परिवार जनों ने। यानी यदि परिवार जन उसको इस अलौकिक बात समझाएंगे ज्ञान की, ये राग द्वेष मोह कैसे विनाश हो जाए, उसकी कोई विधि बनाए, तो कहते कि उन्होंने मित्रता का काम किया। पर करते क्या है लोग, प्रथम तो विद्या पढ़ाने की बात भी आए तो धनार्जन करने की विद्या पढ़ाएंगे, किसमें ज्यादा इनकम है वो विद्या पढ़ाएंगे। बाद में विवाह आदि के कार्य कर देते हैं। ये जो सब संयोग लगाए है ये संसार बढ़ाने वाले है या मोक्ष पहुंचाने वाले है, हमने उसके पीछे लगाए ना सारे। ये सब योग संसार को बढ़ाने वाले हैं। तो जो जन्म मरण रूपी संसार की संतान को बढ़ाने वाले विवाह आदि कार्यों को करें, इस प्रकार के जन तो इस जीव के बैरी है। एक बहुत गंभीरता से और अपने आप का सदा के लिए कैसे कल्याण हो, इस दृष्टि को लेकर इस बात को सुनिए, यह बात बिल्कुल सही मालूम पड़ेगी। हालांकि परिवारजन कोई द्वेष रखकर ऐसा बैर का काम नहीं करते, वे तो अपनी बुद्धि के माफिक भलाई ही समझकर, बच्चों का सुख और हित समझकर किया करते। पर उसका फल क्या होता है कि जन्म मरण रूप संसार का बढ़ाना होता है। भला ही समझा पुत्र का उन्होंने किसी वस्तु से, पर यहाँ तो इस जीव को उसका कुफल भोगना पड़ा। यह जन्म मरण कराने का कारण बनता है। शस्त्र घातक बैरी से बर्बादी का अनियम। शस्त्र घातक यानी शस्त्र से घात करने वाले जो बैरी है वो हमारी बर्बादी करते, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई दुश्मन हो, शस्त्र लेकर आया हो, प्राणाघात कर रहा हो, क्या प्राणघात, प्राणघात, तो उस बैरी ने प्रथम तो एक बार ही उसका प्राण हना, और दूसरे जिसका प्राण हना जा रहा है वह यदि कुछ शांति और समता का अभ्यासी बनता है, अपने शुद्ध परिणामों का स्वागत करता है, तो कई बहुओं के बांधे हुए पाप कर्म उसने दूर कर डाले। किंतु हंसी खुशी से विवाह आदि अनेक झंझटों में लगा तो सारे परिजन इस जीव के ऐसे बैरी जैसे काम ऐसे उस जीव के ऐसे बैरी जैसे काम कर रहे हैं, इसके तो अनेक बार जन्म मरण धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इसने स्वयं बाह्य दृष्टि करके पाप परिणाम करके कर्मों का बंधन किया। जब बहुत समय तक संसार में रहना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, तो इसका अर्थ है कि मारने को जो शस्त्र लेकर बैरी आया है वह तो उसका एक बार ही प्राण हरने का कारण बना, किंतु जो मोह और राग करने वाले परिजन हैं, ये अनेक बार प्राण हरने के, मरण होने के कारण बनते हैं। इसलिए कहा जा रहा है, तुम परिजनों में मोह मत करो। यहां भी अपने ज्ञान बल से यथार्थ तत्व के ज्ञाता बने रहो। धर्म और धर्ममय की मंगलता। हे भव्य आत्मन, इस जीव को केवल अपने आप का धर्म ही शरण है। दर्शन और पूजन से पहले पढ़ते हैं चत्तारी मंगलम, मंगल चार है। कौन से चार मंगल हैं आपको मालूम है ना? तो अरहंत प्रभु मंगल हैं, सिद्ध प्रभु मंगल है, अनेक वचन है, साधु मंगल हैं, और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। वो है के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, क्योंकि केवली प्रणीत धर्म तो एक है। अरहंत मंगल है क्योंकि वे वितराग सर्वज्ञ हैं, शुद्ध ज्ञान विकास वाले हैं। भले ही चारों अघातिया कर्म लगे होने के निमित्त से उनके अभी शरीर में बंधन है, फिर भी भाव बंधन रंच नहीं रहा, क्योंकि मोह का पूर्ण नाश हो गया है और पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। और ऐसा अपूर्व केवल ज्ञान प्रकट हुआ है कि समस्त लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। ऐसे शुद्ध वीतराग सर्वज्ञ परमेष्ठी की भक्ति करने योग्य है। अपना ज्ञान निर्मल करे तभी तो भक्ति कर सकते हैं, और प्रभु की भक्ति के उपयोग के प्रसाद से उसका ज्ञान भी निर्मलता की ओर बढ़ता जाता है। प्रभु की भक्ति कब करेंगे, उनका सही स्वरूप जानेंगे तो उनकी भक्ति होगी सही। तो जहां अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप जानना निक्की करेंगे तो कहते अपना मोह नष्ट हो जाएगा, उसी को सच्ची भक्ति कहेंगे। केवल गाकर भक्ति करना, आरती उतारना, वो भक्ति नहीं है। जब ज्ञान निर्मल हो, राग द्वेष की छाट हो, उस समय भोभो के बांधे हुए कर्म स्वयं खिर जाते हैं और विशुद्ध आत्मीय आनंद उत्पन्न होता है। राग द्वेष आने उससे दूर हो गया, वो उससे अपने भिन्नता जान ली उसने। मंगल का अर्थ, मंगल किसे कहते हैं? मंगल में दो शब्द हैं, मंग ल अथवा गाल, यानी दो पद थे, मंगलाती, मंगम लाती या मम गालयती, ऐसे दो प्रकार है, दो तरह के अर्थ हो गए। मंग का अर्थ है सुख, लोग कहते चंगे मंगे चंगे का अर्थ है स्वस्थ, आज आपको चंगा चाहिए रहना था ना। मंगे का अर्थ है सुखी, जो मंग को ला देवे उसे मंगल कहते हैं। अच्छा, इसीलिए वो चंगल शब्द आया होगा ना, चंगल। दूसरा अर्थ है मंगल, मम नाम पाप का है, जो पाप को गला दे, नष्ट कर दे, उसे मंगल कहते हैं। लोक व्यवहार में मंगल कलश भी चलता है। कोई शुभ कार्य हो तो मंगल कलश रख देते हैं। वह कलश क्या मंगल होगा? मंगल तो वह चीज है जो हमारी सुख की सहयोगी हो और दुख की दूर करणहारी हो। फिर कलश में मंगल की रूढ़ी क्यों हो गई? इसका कारण यह है कि पानी से भरे हुए कलश को देखकर यह निर्णय होता है, जो कलश पूर्ण जलयुक्त है, पूर्ण घन है, यो ही यह आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, पूर्ण ज्ञान युक्त है। वह कलश अपने आत्मा की शुद्ध कराता है, इस कारण वह कलश मंगल माना गया है। पानी से भरे हुए कलश के अंदर रंच भी जगह खाली नहीं रहती है। जिसे मटके में लड्डू भर दिए तो उसके बीच बीच में खाली रहती है, ऐसी बात जल से भरे हुए घड़े के अंदर नहीं होती। उसमें तो जल लबालब परिपूर्ण भरा हुआ होता है और वह नवीन मिट्टी का घड़ा है। जो भीतर भरा है पानी, वह पानी पूरी मिट्टी में भी समाया हुआ है। यह कलश अपने आप की आत्मा की शुद्ध दिलाता है। मेरे में ज्ञान इसी तरह परिपूर्ण भरा हुआ है। बीच में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ज्ञान न हो। जीव जितने विष्कंभ को लिए हुए है उसमें प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ है। विष्कंभ ने उसकी जो चौड़ाई फैलाव जो है हम देखो, क्योंकि जो गुण है वो पूरे प्रदेशों में व्याप्त है, संपूर्ण भागों में है, उसकी पर्याय भी पूरे भाग में है। आत्मा की ज्ञान घनता दो नहीं है ना, नहीं है दो। समझाने के लिए दो, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, उसमें ज्ञान जैसे अनंत गुण है, किंतु ज्ञान कहाँ भरा है? पूरे में फैला हुआ है, पूरे प्रदेश में। द्रव्य नहीं है वो, आत्मा ये द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, और वो गुण के द्वारा पूरा आत्मा ही कहने में आता है। आत्मा को ज्ञान भी कह देते हैं। क्योंकि केवल एक ही गुण नहीं है, सभी जब एक एक अनंत है, और अनंत कैसे है? एक दूसरे से जुदे नहीं हो सकते। एक का नाम लिया तो सभी आ गए उसके अंदर। देखो यहाँ नीचे के पैराग्राफ में बता रहे हैं, देखो आत्मा की ज्ञान घनता लिखा है ना, इस आत्मा को ज्ञान घन बोलते। घन है वो बिल्कुल सॉलिड, पूरा ठसा ठस भरा हुआ। घन का अर्थ वजनदार नहीं, मोटा नहीं। घन का अर्थ है द्वितीय वस्तु का जिसमें अभाव हो, यानी दूसरी किसी वस्तु की उसमें एंट्री नहीं है, वो घन है। पहले के जमाने वो घन होता था, लोहे का इतना बड़ा। हमारे घर में वो ऐसा पापड़ वगैरह बनाते, उसके आटा कूटने के लिए यूज करते थे, इतना घन, सॉलिड का सॉलिड है ना। तो घन का अर्थ है द्वितीय वस्तु का जिसमें अभाव हो। जैसे कोई शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी बड़ी ठोस है, सारभूत है, तो कहते कि इस लकड़ी में सार अधिक है। इसका अर्थ क्या है कि इस लकड़ी में लकड़ी के तत्व को छोड़कर अन्य कोई तत्व नहीं पड़ा है, पूरी सॉलिड उसी चीज उसी से बनी हुई है, कोई अंदर पोली नहीं है। अन्य कोई तत्व पड़ जाए तो सार नहीं रह सकता। घुन हो, कीड़ा हो, पोल हो, उसे सार नहीं कहते। यानी अंदर कीड़े ने खाया हुआ है, अंदर खोखला बन गया है, तो उसको सार नहीं कहेंगे। ऑलरेडी सॉलिड एकदम, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। सार तो उसे कहते हैं जिसमें द्वितीय द्रव्य का अभाव हो। आत्मा, यह आत्मा ज्ञान घन है। दूसरे का अभाव हो यानी सुख और वीर्य का अभाव, ऐसा नहीं लेना, अन्य चीज का उसमें अभाव है। ज्ञान मात्र कहा था ना हमने, वो समय सार पढ़ा कलश टीका में, ज्ञान मात्र यानी उसमें गेय की एंट्री नहीं है। गेय जाने जा रहे हैं, परंतु वो भी ज्ञानमय रहकर उसको जानता है। त तो ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई परतत्व इसमें नहीं है। यह कलश अपने ज्ञान स्वरूप की हमें याद दिलाता है और ज्ञान स्वरूप का स्मरण मंगल है। ये उपचार से वह कलश भी मंगल है। हाँ, एक अपेक्षा से गुण वही आत्मा, परंतु एक ही गुण वह आत्मा नहीं, आत्मा में तो अनंत गुण है, उसका अभेद अखंड पिंड वही तो आत्मा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं गुण भरे और ऊपर कोई कवरिंग है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ हड्डी मांस भरा है और ऊपर एक स्किन चामड़ी लपेटी, ऐसा नहीं है। यानी गुणों का ही बना हुआ आत्मा, गुणों का बना हुआ आत्मा है। नहीं तो ये शरीर कैसा है, अंदर चमड़ी है, हड्डी है, सॉरी चमड़ी तो ऊपर है, अंदर हड्डी मांस लोही सब है और ऊपर चमड़ी से लपेटा हुआ है, ऐसा आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं कि गुण है और उसमें कुछ लपेट कर द्रव्य बना, ऐसा नहीं है। मंगल चतुष्क, चार मंगल है, वो है ना। नहीं नहीं ये क्या कह रहे हैं, गुण यानी उसके गुण और ये गुणों की पर्याय होती वो अलग। देखो ज्ञान ये गुण है, वो पर्याय, जानना ये पर्याय, गुण हाँ वही आत्मा। जैसे हम उसका पिंड, जैसे पुद्गल में क्या है, इसमें क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुणों का पिंड है। ऐसे आत्मा क्या है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बाकी अस्तित्व वस्तु तो सब आएगा उसमें, अनंत गुणों का पिंड है वो। और वो गुण कहाँ है, उसके सारे प्रदेशों में है और उनकी पर्याय होती है, अपना अपना कार्य होता है, कार्य को पर्याय कहते हैं। अभी हम आए 12 नंबर के पृष्ठ पर। चार मंगल है, अरहंत प्रभु मंगल है, और यही अरहंत प्रभु जब चार अघातीय कर्मों का विनाश करके शरीर रहित हो जाते हैं, केवल ज्ञान पुंज आत्मा ही रहते हैं, रहता केवल केवल यानी केवल अलग चाहिए, केवल ज्ञान पुंज आत्मा ही रहता है, उसे सिद्ध कहते हैं। ज्ञान का पुंज कहो, अनंत गुणों का पुंज कहो, ज्ञान कहने से उसमें सारे गुण गर्भित हो गए। आत्मा का परिपूर्ण विशुद्ध अंतर बाह्य सर्व यत्नों के संपर्क से रहित यह शुद्ध स्वरूप है। ऐसा ही स्वरूप हम आप सबका है। बात क्या, भूल क्या हुई, पर उसका विश्वास न करके बाह्य की दृष्टि करके जड़ विभूति के प्रति भिखारी बन जाता है, क्योंकि उसकी महत्ता लगती है, वो अपने को चाहिए वाली भाव उत्पन्न होता है, तो कहते वो भिखारी बन गया है। कि अपना सुख अपना स्वाधीन वैभव उसका पता नहीं है और दूसरी चीज महान लगती है, तो कहते भिखारी बन रहा है। जीवन चलाने योग्य सब कुछ मिला है तब भी संतोष नहीं कर सकते, सिद्ध प्रभु मंगल हैं, ये शाश्वत निराकुल सुख में ही मग्न रहेंगे, कर्म बंधन से कभी भी लिप्त न होंगे, यानी अभी वो संसार में कभी भी नहीं आएंगे। मंगल चार है, जिनमें दो तो बताए अरिहंत सिद्ध, ये देव कहलाते हैं। तीसरे मंगल है साधु, साधु कहने में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को लेना। ये साधु पुरुष संसार शरीर और भोगों से विरक्त है, अपने आप के ज्ञान स्वरूप की दृष्टि में निरत रहा करते हैं, ये समस्त जीवों में समता भाव रखते हैं। कोई वंदन कर रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, कोई लाठी से पीट रहा हो, सब जीवों में उनके समता रहती है, इसलिए उनकी इतनी पूज्यता है। ये सब धर्म के प्रसाद से मंगल है, धर्म मंगल है, यानी सबने वो केवल ये जो धर्म अपनाया है इसलिए वो सारे मंगल है, और इसलिए कहते केवल ही भगवान ने बताया हुआ धर्म ही मंगल है। साधु की अविचलितता, अविचलितता। राजा श्रेणिक के समय में घटना घटी जिससे श्रेणिक राजा के पतन का और उद्धार का दोनों का संबंध है। पूर्व काल में अपने जीवन के पूर्वार्ध में श्रेणिक बौद्ध थे और उनकी पत्नी चेलना जैन थी। कभी कहीं दोनों में अपने अपने धर्म के प्रति विवाद हो जाता था। एक बार श्रेणिक के धर्म विवाद में कहीं हार मानकर बदला चुकाने के लिए साधु के अपमान का प्रयत्न किया। श्रेणिक जंगल में जा रहे थे। एक जगह एक मुनि महाराज बैठे हुए थे। पास ही वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सो उसी सर्प को उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और चले आए। इससे उसे सातवें नरक का बंध हुआ। दो तीन दिन बाद कुछ जिक्र हुआ। जब जिस ओर दृष्टि नहीं है तब वहां कैसे मन में यह आ गया, उनको बड़ा कष्ट होगा। दो तीन दिन के बाद चेलना से बात चली। चेलना साधुओं के गुणों को बखान रही थी। तब श्रेणिक बोले, हमने तुम्हारे साधु के ऊपर मरा सांप डाल दिया है। तो चेलना ने कहा, अरे तुमने बड़ा अनर्थ किया, अभी तक साधु महाराज निराहार बैठे होंगे। तो श्रेणिक ने कहा, अरे वह तो पहले ही सांप को फेंक कर उठकर चले गए होंगे, वह तो उसी स्थान पर ध्यानावस्था में बैठे होंगे। दोनों चले मुनि महाराज को देखने। वहां जाकर देखा तो मुनि महाराज ध्यानस्थ बैठे हुए थे। मरा हुआ सांप गले में पड़ा हुआ था। बहुत सी चींटियां सारे शरीर में रेंग रही थी। समता के दर्शन से श्रेणिक का उद्धार। इस उपसर्ग के निवारण में चेलना ने क्या किया कि नीचे शक्कर बिखेर दी, सारी चींटियां नीचे उतर गई। तब सांप को अलग कर दिया। कुछ ही समय बाद मुनिराज की आंखें खुली। वे उत्कृष्ट ज्ञानी थे। दोनों को मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, उभयो धर्म वृद्धि रस्तु, यानी धर्म वृद्धि हो, तुम दोनों को धर्म वृद्धि हो। अब तो राजा श्रेणिक को कुछ विवेक जगा। सोचा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, फिर भी मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ने आशीर्वाद, हम दोनों के प्रति मुनिराज का यह भी भाव नहीं हुआ, इस चेलना ने तो उपसर्ग दूर किया है, धर्मात्मा है, साधु भक्ति से ओतप्रोत है, तो इसकी ओर कुछ प्रसन्नता से देख भी ले और इसे पहले आशीर्वाद दे, सो भी नहीं। उन मुनिराज की दृष्टि में वे दोनों एक समान थे। अब तो श्रेणिक यह सोचने लगा, मैंने ऐसे उदार महान योगीराज को ऐसा उपसर्ग किया, मुझे तो जीवित रहना ही न चाहिए। विचार करने लगा कि मैं अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन इसी समय उड़ा दूं, ऐसे पापी को जीने का अधिकार नहीं है। मुनिराज बोले, अरे श्रेणिक, यह क्या विचार तुम करते हो, यह तो कर्मों के उदय है। आत्मा तो स्वभावतः पवित्र है, तुम आत्महत्या करना क्यों विचार रहे हो। लो, मन की बात को मुनिराज ने बता दिया। इतनी बात सुनकर अब श्रेणिक और धर्मानुरागी हुआ। अब साधु महाराज के प्रति श्रेणिक के इतनी भक्ति जगी कि धन संपदा विषय कषाय के सर्व विकल्पों का परित्याग करके साधु के गुणों में अनुरक्त हो गया। उसे सम्यक जगा कि उसके प्रताप से सप्तम नरक से घटकर केवल पहले नरक की स्थिति रह गई और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अब वो तीर्थंकर के पादमूल में हुआ होगा, पर इस कथन में कहाँ हुआ क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं की है, बस हो गया महावीर के साम्य धर्म की ओर। एक समता भाव के रख रहने से साधु को भी आनंद रहता और भक्त का भी उद्धार होता है। यो अरहंत सिद्ध साधु को मंगल कहा। अब चतुर्थ मंगल सुने। केवली भगवान ने जो धर्म बताया है, जो मेरा स्वरूप बताया है, उस स्वरूप की दृष्टि करना, यही है धर्म पालन। यह धर्म पालन मंगल है। यो इस मंगल की ओर जो लगाए वह तो है वास्तविक मित्र, और जो इस मंगल से हटकर जन्म संतान बढ़ाने की ही कर्तव्य कराता है वह तो इस जीव का वास्तविक बैरी है। परिजन वैभव आदि में व्यामोह मत करो, हित मानकर राग न करो, किंतु अपने आप के स्वरूप दर्शन और प्रभु दर्शन को हित काम कारण मानकर उसकी ओर बढ़ो। यही रुकेंगे, अभी 85 कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद।